नमस्ते, आपका स्वागत है। हम आपको कुछ सबसे महत्वपूर्ण शब्द बताने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। यह हर एक के लिए शुभ समाचार है। चित्रों को देखें और हमारे द्वारा आपको बताए जाने वाले इस सत्र के शुभ समाचार को ध्यान पूर्वक सुने। आइए पहले चित्र से शुरू करते हैं। चित्र एक, सृष्टि का आरंभ। समय के आरंभ में केवल परमेश्वर मौजूद था। फिर परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी का स्वरूप नहीं था और केवल अंधेरा था, इसलिए परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई और उसने प्रकाश को अपनी चमक बिखेरने का आदेश दिया। उसने सूरज और चांद और सारे तारे बनाए। परमेश्वर अच्छा है और वह पूरी सृष्टि पर शासन करता है। चित्र दो, परमेश्वर के शब्द। इस चित्र में दिखाई गई पुस्तक बाइबल है। ये परमेश्वर के शब्द हैं और ये हमें परमेश्वर और उसके तरीकों के बारे में बताती है। परमेश्वर सभी लोगों को प्रेम करता है। हम आपको जो कुछ बता रहे हैं वह बाइबल में दिया गया है। चित्र तीन, सृष्टि। परमेश्वर ने हर चीज की रचना की है। परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। उसने आकाश बनाया, उसने समुद्र बनाया, उसने भूमि को प्रकट होने का आदेश दिया और भूमि बन गई। फिर उसने सभी जीवित जीवों को बनाया, पानी में मछलियां, हवा में पक्षी और सभी जंतु। इस तरह से परमेश्वर ने हर चीज को बनाया। अपनी बनाई सभी चीजों को देखकर परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ। परमेश्वर द्वारा बनाई गई हर चीज काफी अच्छी थी। चित्र चार, आदम और हवा। परमेश्वर ने पहले आदमी और फिर पहली औरत की रचना की। उसने उन्हें आदम और हवा नाम दिया। उसने अपनी बनाई हर चीज के ऊपर उनको अधिकार दिया। परमेश्वर ने उनके रहने के लिए एक बाग बनाया। वहां परमेश्वर ने उनके साथ चहलकदमी की और उनसे बात की। वे परमेश्वर के मित्र थे। परमेश्वर ने उनको बाग में केवल एक पेड़ को छोड़कर बाकी सभी पेड़ों के फलों को खाने की अनुमति दी। उनको अच्छे और बुरे के ज्ञान वाले पेड़ का फल खाने की इजाजत नहीं दी। ये पेड़ बाग के बीच में था। शैतान नामक परमेश्वर का एक शत्रु उनके पास बाग में आया। उसने आदम और हवा को परमेश्वर की आज्ञा ना मानने को उकसाया और उन लोगों ने मनाही वाला फल खा लिया। उन्होंने परमेश्वर की बात ना मानकर उसके विरुद्ध पाप किया और उससे अपनी मित्रता तोड़ ली। परमेश्वर ने आदम और हवा को सजा देते हुए खूबसूरत बाग से बाहर निकाल दिया। आदम और हवा सभी लोगों के पूर्वज हैं और हम सभी उनसे एक पाप पूर्ण प्रगति प्राप्त करते हैं। सभी लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और उससे अलग हो गए। इसलिए हमें दर्द, बीमारी और मृत्यु का अनुभव होता है। चित्र पांच, कैन और अबेल। आदम और हवा के दो पुत्र थे। इनके नाम कैन और अबेल थे। अबेल ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, लेकिन कैन ने ऐसा नहीं किया। कैन ने अबेल से ईर्ष्या की और एक दिन उसने अपने भाई को मार डाला। परमेश्वर ने इस भयानक अपराध के लिए कैन को दंड दिया। जब लोग पाप करते हैं तो परमेश्वर क्रोधित होता है। परमेश्वर ने लोगों से मित्रता का निकट संबंध रखना चाहा, लेकिन पाप ने हर एक को परमेश्वर से पूरी तरह अलग कर दिया। चित्र 6, नूह की किश्ती। आदम और हवा की अनेक पीढ़ियों में अनेक वंशज उत्पन्न हुए। उन सभी लोगों ने पाप किए और परमेश्वर की अवहेलना की। लोगों का पाप इतना बढ़ गया कि परमेश्वर ने महाप्रलय के द्वारा उन सबको नष्ट कर देने का फैसला किया। ऐसा केवल एक ही व्यक्ति था जो परमेश्वर को प्रेम करता और आज्ञा मानता था। उसका नाम नूह था। ईश्वर ने नूह को एक बड़ा जहाज बनाने को कहा, जिससे उसे और उसके परिवार को महाप्रलय से बचाया जा सके। जहाज बनाने पर नूह ने लोगों को परमेश्वर के फैसले और आने वाली महाप्रलय के बारे में आगाह किया। हालांकि लोगों ने उसकी चेतावनी पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और अपने शैतानी तौर तरीकों को छोड़ने से मना कर दिया। चित्र 7, महाप्रलय। परमेश्वर प्रत्येक प्रकार के जीव जंतु को नूह के पास लाया और नूह ने उन्हें जहाज में जगह दी। फिर नूह और उसकी पत्नी, उनके तीन पुत्र और उनकी पत्नियां भी जहाज में चढ़ गए। जानवरों के अलावा जहाज में कुल मिलाकर केवल 8 लोग थे। फिर परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। 7 दिनों के बाद परमेश्वर के आदेश पर भारी वर्षा हुई और दिन रात पानी बरसता रहा, जब तक कि पूरी पृथ्वी पर बाढ़ नहीं आ गई। जहाज के बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा जान बचाने की संभावना को बीते हुए देर हो चुकी थी। वे सभी लोग डूब गए। हालांकि नूह और उसके परिवार के लोग जहाज के अंदर सुरक्षित रहे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसकी बात मानी। चित्र 8, इब्राहिम, सारा और इसहाक। तमाम वर्षों के बाद नूह के वंशज अनेक कबीलों के रूप में बस गए। इब्राहिम नूह का एक वंशज था। वह परमेश्वर को प्रेम करने वाला और आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया कि उसका वंशज एक महान राष्ट्र बनेगा। इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा के कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उन्होंने तब भी परमेश्वर के वचन में यकीन किया। परमेश्वर का वचन पूरा होने के लिए अनेक वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद भी उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ। इसलिए इब्राहिम ने अपनी गुलाम औरत से एक बच्चा पैदा किया। गुलाम औरत से पैदा हुए बच्चे का नाम इश्माइल रखा गया। वह अरब राष्ट्रों का पिता बना। जब इब्राहिम और सारा बच्चा पैदा करने के लिहाज से काफी बुजुर्ग हो गए, तो परमेश्वर ने अपना वचन निभाया और उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा। परमेश्वर ने इसहाक और उसके वंशजों के माध्यम से सभी लोगों पर अपनी कृपा करने का वचन दिया। चित्र 9, मूसा और परमेश्वर के नियम। इसहाक के वंशजों ने इज़राइल नाम के एक महान राष्ट्र की स्थापना की। मोसेस इसहाक के वंशजों में से एक था। उसने परमेश्वर में विश्वास किया और आज्ञा मानी। परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर बुलाया और उससे बात की। लोगों को शिक्षा देने के लिए परमेश्वर ने मूसा को अपने नियम बताए। पत्थर के दो टुकड़ों पर लिखे हुए परमेश्वर के नियमों को लेकर मूसा पर्वत से नीचे आया। परमेश्वर ने चाहा कि हर कोई उसके नियमों का पालन करे। चित्र 10 आदेश। मूसा को परमेश्वर द्वारा बताए गए नियम बहुत शुभ हैं। इनका पालन करने वाले हर व्यक्ति को परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये परमेश्वर के नियम हैं। पहला नियम, हमें केवल परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए और आज्ञा माननी चाहिए जो एक ही है और सत्य है। नियम 2, कोई मूर्ति ना बनाए और उसके आगे नतमस्तक ना हो। नियम 3, असम्मानजनक तरीके से परमेश्वर का नाम ना लें। नियम 4, हर सप्ताह में विश्राम दिन और परमेश्वर की पूजा करने के लिए एक दिन अलग से निकालें। नियम 5, बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा पालन और आदर अवश्य करना चाहिए। नियम 6, हत्या ना करें। नियम 7, व्यभिचार ना करें। नियम 8, चोरी ना करें। नियम 9, अपने पड़ोसियों के खिलाफ कोई झूठी गवाही ना दे। नियम 10, उन चीजों पर अधिकार ना जताएं जो दूसरों की है। चित्र 11, पाप के लिए बलिदान। मूसा के समय में जब कोई व्यक्ति परमेश्वर का नियम तोड़ता था तो उसे एक मेमने का बलिदान करना होता था। कानून तोड़ने वाले के बदले मेमने की मृत्यु होती थी। इससे लोगों को याद रहता था कि परमेश्वर के नियम तोड़कर पाप करना गलत बात है और पाप की सजा मौत है। मेमना भी एक प्रतीक था। यह एक अधिक बड़े बलिदान की ओर संकेत करता था जो बाद में होने वाला था। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजने का फैसला किया जो लोगों के पापों को दूर करने के लिए बलिदान हो। यीशु को परमेश्वर का मेमना कहा गया। सभी लोगों के लिए बलिदान होने के लिए उसे विश्व में भेजा जा रहा था। चित्र 12, एक वचनबद्ध मुक्तिदाता। अनेक वर्ष बाद स्वर्ग से एक फरिश्ता मरियम नाम की एक युवा कुवारी के पास भेजा गया। मरियम ने यूसुफ नामक आदमी से विवाह करने का वचन दिया था। फरिश्ते ने मरियम से कहा, तुमको परमेश्वर द्वारा चुना गया है। तुम एक पुत्र को जन्म दोगी और तुम उसे यीशु पुकारोगी। मरियम ने कहा, यह कैसे हो सकता है क्योंकि मैं कुवारी हूँ। फरिश्ते ने उत्तर दिया, तुम पर पवित्र आशीर्वाद बरसेगा और तुम बच्चे को गर्भ में धारण करोगी। इस तरह जन्म लेने वाला पवित्र व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। फरिश्ता यूसुफ के स्वप्न में भी प्रकट हुआ। फरिश्ते ने कहा, यूसुफ, मरियम को अपनी पत्नी बनाने में संकोच मत करो, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसे यीशु नाम दोगे। यीशु का अर्थ मुक्तिदाता है, जो लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यूसुफ ने मरियम से विवाह किया, लेकिन बच्चे का जन्म होने के बाद तक उसके साथ नहीं सोया। चित्र 13, यीशु का जन्म। उस समय एक रोमन शासक ने सभी लोगों को उनके पूर्वजों के कस्बों में लौट जाने का आदेश दिया, जिससे उनको पंजीकृत किया जा सके। मरियम और जोसेफ यात्रा करके बैतलहम कस्बे में पहुंचे। जब वे पहुंचे तो वहां एक पशुशाला के अलावा उनके ठहरने के लिए और कोई स्थान नहीं था। वहीं मरियम ने शिशु यीशु को जन्म दिया। उसी रात कुछ गडरियों के सामने एक फरिश्ता प्रकट हुआ, जो पास के खेत में अपनी भेड़ों की निगरानी कर रहे थे। फरिश्ते ने कहा, मैं सभी लोगों के लिए तुम्हें शुभ समाचार सुनाता हूँ। आज तुम्हारे बीच मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। वह महान प्रभु मसीह है। मसीह या क्राइस्ट एक उपाधि है, जिसका अर्थ है परमेश्वर द्वारा चुना हुआ। वह वो व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए भेजने का वचन दिया। लाड एक उपाधि है, जिसका अर्थ है पवित्र शासक। परमेश्वर की स्तुतियां गाते अनेक अन्य फरिश्ते अचानक आसमान में प्रकट हुए। गडरियों ने एक दूसरे से कहा, आओ बैतलहम चलें और वे घटनाएं होती देखें, जिनके बारे में हमें प्रभु ने अभी बताया है। जब उन्होंने यीशु को देख लिया, तो इस बच्चे के बारे में सुने गए शब्दों को उन्होंने और लोगों को बताया। इसे सुनने वाला हर व्यक्ति आश्चर्यचकित हुआ। चित्र 14, यीशु शिक्षक के रूप में। यीशु मरियम और यूसुफ के घर में बड़े हुए। जब वे 12 साल के हो गए, तो मरियम और यूसुफ उन्हें यरूशलेम ले गए। उन्होंने शिक्षकों और लोगों के नेताओं से परमेश्वर के बारे में बात की। उन्होंने उन लोगों को सुना और उनसे प्रश्न पूछे। वे सभी लोग परमेश्वर के बारे में यीशु का गूढ़ ज्ञान देखकर चकित हुए। जब यीशु 30 वर्ष के हुए, तो उन्होंने लोगों को परमेश्वर के बारे में शिक्षा देना शुरू कर दिया। अनेक लोगों ने उनकी शिक्षाओं में विश्वास किया और उनका अनुसरण किया। हालांकि कुछ धार्मिक नेताओं ने विश्वास नहीं किया और वे उनके विरोध में हो गए। चित्र 15, यीशु के चमत्कार। यीशु को परमेश्वर से महान शक्ति मिली थी। उन्होंने अनेक चमत्कार किए। उन्होंने रोगियों को चंगा किया और अंधों को देखने लायक बनाया। उन्होंने मरे हुए लोगों से बात की और उन्हें जिंदा किया। उन्होंने तूफानों को शांत किया और पानी पर चले। जब लोगों ने ये चमत्कार देखे, तो अनेक लोगों को यह विश्वास हो गया कि उन्हें ईश्वर ने भेजा है। यीशु ने जो कुछ भी किया और कहा, वे देखकर वे चकित हुए। यीशु के पास हमारी मदद करने की शक्ति भी है। चित्र 16, यीशु के कष्ट। यीशु ने आश्चर्यजनक काम किए और अनेक लोगों ने उनका अनुसरण किया। उन्होंने अनेक लोगों की मदद की और परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा दी। यीशु लोगों को परमेश्वर का प्रेम दिखाने और लोगों को फिर परमेश्वर से जोड़ने के लिए आए। हालांकि धार्मिक नेता यीशु से ईर्ष्या करते थे, उनके हृदय कठोर थे और उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि यीशु को परमेश्वर ने भेजा है। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि उन्होंने परमेश्वर के नियम तोड़े हैं और यह कि वे पापी हैं। उनके नेताओं ने यीशु के बारे में झूठ बोला और उन लोगों ने यीशु को गिरफ्तार करवाया। सैनिकों ने यीशु को कोड़े लगाए। उन लोगों ने यीशु के सिर पर कांटों से बना मुकुट पहनाया और उनका मजाक उड़ाया। याद रखें, यीशु परमेश्वर के पुत्र थे। उनके पास उन सभी लोगों को नष्ट करने की शक्ति थी, लेकिन यीशु ने उनका विरोध नहीं किया। वे जानते थे कि यही परमेश्वर की योजना है। चित्र 17। यीशु को सूली पर टांगा गया। सैनिकों ने यीशु को लकड़ी के बने एक क्रूस पर कीलों से जड़ दिया और उनको तब तक लटकाया गया जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। उन दिनों कानून तोड़ने वालों को इसी तरह क्रूरता पूर्वक मारे जाने की प्रथा थी। यीशु के साथ दो अपराधियों को भी क्रूस पर टांगा गया। हालांकि यीशु अपराधी नहीं थे, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। यीशु हमारे पापों के लिए मरे और उनको वह सजा मिली जो हमारे लिए थी। हम सभी पापी हैं और हमें हमारे पापों के लिए मृत्यु की सजा मिलनी चाहिए। सभी लोगों के पापों के एवज में यीशु ने अपना बलिदान किया। यदि हम स्वीकार करें कि हम पापी हैं और अपने पापों से मुंह मोड़ लें, तो परमेश्वर हमारे पाप क्षमा कर देगा। पश्चाताप करने और महान यीशु में विश्वास करने से आप बचाए जाएंगे। चित्र 18। पुनर्जीवन। यीशु के शत्रुओं ने सोचा कि उन्होंने उसे नष्ट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्रूस पर यीशु के मारे जाने के बाद उनके अनुयायी उनके मृत शरीर को एक गुफा में ले गए। उन्होंने गुफा का प्रवेश द्वार एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। दो दिन बीत जाने के बाद तीसरे दिन यीशु मृत्यु से जी उठे, जैसा कि उन्होंने करने के लिए कहा था। दफन संस्कार करने के लिए कुछ महिलाएं गुफा में गई थी। उन्होंने देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और यीशु का शरीर वहां से जा चुका है। दो फरिश्ते प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि यीशु जीवित है। उन्होंने कहा, वह यहाँ नहीं है, वह जीवित हो चुका है। हाँ, यीशु मृत्यु से जीवित हो उठे थे। यीशु ने दिखाया कि वे वास्तव में परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह आज भी जीवित हैं और शैतान तथा मृत्यु पर यीशु ने हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर ली है। चित्र 19। थॉमस का विश्वास। मृत्यु से जी उठने के बाद वे अपने अनुयायियों के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने उनके साथ बात की और भोजन किया। उनमें से एक थॉमस नाम उनके साथ नहीं था। उसने कहा, जब तक मैं कीलों से छिदे हुए हाथ को देख और छू ना लूं, तब तक मैं नहीं मान सकता कि यीशु फिर से जीवित हो उठे हैं। एक सप्ताह बाद प्रभु यीशु फिर से प्रकट हुए और इस बार थॉमस भी वहां पर था। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं यीशु मसीह के सम्मुख थॉमस अपने घुटनों पर बैठ गया और कहा, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। थॉमस को अब कोई संदेह ना रहा। यीशु ने कहा, तुमने विश्वास किया क्योंकि तुमने मुझे देखा। वे धन्य हैं जो मुझे देखते नहीं लेकिन फिर भी मुझ में विश्वास करते हैं। चित्र 20, स्वर्गारोहण। मृत्यु से जी उठने के बाद यीशु ने अनेक लोगों को दर्शन दिए। लोगों ने उन्हें देखा और जाना कि उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया है और जीवित हो उठे हैं। 40 दिनों के बाद यीशु के स्वर्ग वापस जाने का समय आ गया। उन्होंने वह काम पूरा कर लिया था जो वह करने आए थे। यीशु मसीह ने कहा, जाओ और सभी देशों में शिष्य बनाओ, उनको वे सारी बातें मानने की शिक्षा दो जो मैंने तुम्हें आदेश दिया है। जैसा कि यीशु मसीह के अनुयायियों ने देखा कि वे पृथ्वी से ऊपर उठे और उनकी नजरों के सामने ही बादलों में छिप गए, तभी दो फरिश्ते प्रकट हुए। उन्होंने शिष्यों को बताया कि यीशु एक दिन इसी तरह वापस लौटेंगे जैसे उन्होंने उन्हें जाते देखा है। यीशु मसीह अब स्वर्ग में है। वे उन सभी लोगों के लिए स्थान बनाते हैं जो उनका अनुसरण करते हैं। क्या आप प्रभु यीशु में विश्वास और उनका अनुसरण करेंगे? क्या आप तब उनसे मिलने के लिए तैयार हैं जब वे वापस लौटेंगे? चित्र 21, खाली क्रूस। यीशु क्रूस पर क्यों मरे? यीशु लोगों को पापों के दंड से बचाने के लिए मरे। यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया। क्रूस हमें याद दिलाता है कि वे हमारे उन पापों को दूर करने के लिए मरे जो हमें परमेश्वर से अलग करते हैं। यीशु पवित्र, पाप रहित परमेश्वर के मेल में है। उन्होंने हमारे लिए अपना बलिदान किया। यदि हम यीशु मसीह में विश्वास करें और अपने पापों से मुंह मोड़ लें तो परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा। यीशु मसीह हमें परमेश्वर के बच्चे बनाते हैं। नीचे दिए गए एक चित्र यह समझाने में आपकी मदद करेंगे कि परमेश्वर का पुत्र होने और प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी होने का क्या अर्थ है। चित्र 22, दो सड़कें। यीशु ने शाश्वत जीवन के मार्ग की शिक्षा दी। प्रत्येक के जीवन की शुरुआत पाप की चौड़ी सड़क से होती है, क्योंकि हम सभी को आदम से एक पापपूर्ण प्रकृति उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। एक पतली सड़क है जो हमें परमेश्वर और स्वर्ग के शाश्वत जीवन की ओर ले जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें इस पतली सड़क पर चलना चाहिए। इस चित्र में पतली सड़क के प्रवेश पर मौजूद एक क्रूस आप देख सकते हैं। यदि हम अपने पापों का प्रायश्चित करें और यह विश्वास करें कि यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरे तो हम इस रास्ते पर प्रवेश कर सकते हैं। अनेक लोग अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहते। उनके लिए स्वर्ग का मार्ग और भी संकरा हो जाता है। वे नरक में नष्ट होने के लिए निरंतर चौड़ी वाली सड़क पर चलते रहते हैं। आप कौन सी सड़क पर चल रहे हैं? परमेश्वर से अभी बात क्यों नहीं करते? उससे कहें, प्रभु परमेश्वर, आप महान और पवित्र हैं। मैं आपके सम्मुख स्वीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पापों के दंड को उठाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे बदले जान दी। प्रभु कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे मेरे पापों से मुक्त करें और मुझे अपने बच्चों में शामिल करें। मैं यीशु मसीह के बताए रास्ते का अनुसरण करना चाहता हूँ और मृत्यु के बाद आपके साथ स्वर्ग में रहना चाहता हूँ। धन्यवाद ओ मेरे प्रभु, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। चित्र 23, परमेश्वर के बच्चे। इस चित्र में आप यीशु मसीह को देख सकते हैं। वे सभी जातियां, देशों और भाषाएं समूहों के लोगों का स्वागत कर रहे हैं। इन लोगों ने उसमें विश्वास किया और परमेश्वर के बच्चे बन गए। ये सभी पतली सड़क पर आए हैं जो स्वर्ग का रास्ता है। परमेश्वर के बच्चे किसी बड़े परिवार की तरह हैं। इनमें धनी और निर्धन, काले या गोरे सभी शामिल हो सकते हैं। इनमें आदमी, औरतें और बच्चे हैं। ये सभी लोग एक साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहे हैं। चित्र 24, पुनर्जन्म। जब यीशु पृथ्वी पर थे उस समय निकोदेमुस नाम का एक महत्वपूर्ण शिक्षक था। एक रात वह यीशु के पास कुछ प्रश्न पूछने के लिए गया। यीशु ने उसे कुछ आश्चर्यजनक बातें बताई। उसने कहा कि हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर का पुत्र बनना चाहता है उसे फिर से जन्म अवश्य लेना होगा। जब हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो हम अपने माता पिता के परिवार के सदस्य बनते हैं। इसी तरह से दूसरी बार जन्म लेकर हम परमेश्वर के परिवार में शामिल होते हैं। जहाँ पहली बार का जन्म भौतिक जन्म है, वही दूसरा जन्म आत्मिक जन्म है। इस आत्मिक जन्म से परमेश्वर की आत्मा हमें नया जीवन प्रदान करती है। यदि हम उसमें मर जाते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह के आत्मिक जीवन को हमें संचार करता है। वह हमारा मुक्तिदाता और प्रभु बन जाता है। यह हमारे नए आत्मिक जीवन की शुरुआत है। हम नए व्यक्ति बन जाते हैं, परमेश्वर के व्यक्ति। हमारे नए जीवन का विकास अवश्य होना चाहिए जिससे हम प्रतिदिन यीशु मसीह की भांति बनते जाएं। चित्र 25, पवित्र आत्मा का आगमन। यीशु ने स्वर्ग वापस जाने से पहले अपने अनुयायियों को वचन दिया कि वे पवित्र आत्मा को उनके पास भेजेंगे। यीशु की स्वर्ग वापसी के 10 दिनों के बाद उनके सभी अनुयायी एक स्थान पर एकत्रित हुए। आप उनको इस चित्र में देख सकते हैं। अचानक तेज हवा की भांति एक आवाज हुई। प्रत्येक अनुयायी के ऊपर अग्नि की लपटें जैसे प्रकट हुई। इस तरह पवित्र आत्मा आया और उसका संचार उन सभी में हो गया जैसे कि यीशु मसीह ने वचन दिया था। उस दिन अनेक राष्ट्रों के लोग यरूशलेम में मौजूद थे। अनुयायियों ने उनकी भाषाओं में बात करने की शक्ति प्राप्त की। उन्होंने इकट्ठा लोगों को ईश्वर द्वारा किए गए आश्चर्यजनक कामों के बारे में बताया। उस दिन 3,000 लोगों पर यीशु मसीह की कृपा हुई। आज पवित्र आत्मा उन सभी लोगों में बात करती है जो सच में प्रभु यीशु का अनुसरण करते हैं। पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह का आज्ञा पालन करने और अन्य लोगों को उनके बारे में बताने की शक्ति प्रदान करती है। चित्र 26, प्रकाश में चलना। यीशु मसीह में विश्वास करने से पहले व्यक्ति चित्र में दिखाए गए व्यक्ति की भांति होता है जो अंधेरे में चल रहा है। वह ठोकरे खाता है और प्राय गिरता है, क्योंकि उसे रास्ता दिखाने के लिए कोई प्रकाश नहीं होता। जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो हम चमकदार दिन में सड़क पर चलते व्यक्ति की भांति हो जाते हैं। हम देख सकते हैं कि हम कहाँ चल रहे हैं। हम गिरते नहीं, चाहे रास्ता ऊबड़ खाबड़ ही क्यों ना हो। प्रभु यीशु ने कहा, मैं संसार का प्रकाश हूँ। यदि कोई व्यक्ति मेरा अनुसरण करता है, तो उसे अंधेरे में नहीं चलना पड़ेगा। प्रभु यीशु चाहते हैं कि उनके सभी लोग उनकी दिव्य अच्छाइयों के रास्ते पर चलें और बेहतर से अधिक बेहतर बनें। उनके मार्ग का अनुसरण करने वाले सभी विश्वास करने वालों को वे अपनी पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं। चित्र 27, एक नया व्यक्ति। जब हम यीशु मसीह के अनुयायी बन जाते हैं, तो हम नए व्यक्ति बन जाते हैं। हम ईश्वर की आज्ञा पालन करना चाहते हैं। उसने हमें अपने निर्देश अपनी पुस्तक बाइबल में दिए हैं। यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता हैं। वे हमारे प्रभु, हमारे जीवन के शासक हैं। प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी के रूप में हम व्यभिचार या लड़ाई नहीं करते, हम चोरी नहीं करते। बाइबल हमें घमंड नहीं बल्कि विनम्रता की, स्वार्थी नहीं बल्कि दूसरों को प्रेम करने की और उनके सुख दुख बांटने, क्रोधित नहीं बल्कि हमारे सभी क्रियाकलापों में विवेकपूर्ण और तर्क संगत बनने की शिक्षा देती है। जैसे जैसे हमारी आत्मा का विकास होता है, वैसे वैसे पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का सम्मान करते हुए प्रतिदिन अधिकाधिक सही तरीके से जीवन जीने में सक्षम बनाती है। इस नए जीवन में हम उन सभी पुरानी चीजों से नाता तोड़ लेते हैं जो पहले हमने कभी किया था। यह ठीक उसी तरह से होता है जैसे कि आप इस चित्र में आदमी को करते देख सकते हैं। हम अपनी पुरानी जिंदगी से बिल्कुल फिर जाते हैं। पुराने व्यक्ति के रूप में हम परमेश्वर के नियमों को अस्वीकार करते थे, जिसका दंड मृत्यु है। अब अगर हमने इस पुराने व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया, तो तब परमेश्वर की आत्मा हम में वास करती है और यह हमें हमारे पुराने व्यक्ति से दूर रखने में हमारी मदद करती है। परमेश्वर हमें बताता है कि हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गए हैं और उनके साथ फिर से पुनः जीवित हो उठे हैं। अब हम हमारे अंदर वास करने वाली परमेश्वर की आत्मा के साथ रहते हैं, जो हमें नए जीवन में दिन प्रतिदिन अच्छे काम करने में मदद करती है। चित्र 28, मसीह परिवार। जब कोई परिवार सच में यीशु मसीह के मार्ग पर चलता है, तो पति अपनी पत्नी को प्रेम करता है और पत्नी अपने पति का आदर करती है। यह परमेश्वर के शब्दों की शिक्षा है। पति और पत्नी एक दूसरे की मदद और प्रोत्साहित करते हैं। वे अपने बच्चों को परमेश्वर से प्रेम करने और उसकी आज्ञा मानने की शिक्षा देते हैं। परमेश्वर का सम्मान करने वाला परिवार संकट के समय एकजुट रहता है। वे आपसी सहयोग के साथ मिलजुल कर प्रार्थना और कार्य करते हैं। चित्र 29। अपने शत्रुओं को प्रेम करो। प्रभु यीशु ने अपने अनुयायियों को सिखाया, अपने शत्रुओं को प्रेम करो और उनके लिए प्रार्थना करो जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया। हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए ताकि हम स्वर्ग में अपने पिता के पुत्र बन सके। यीशु ने एक आदमी के बारे में कहानी सुनाई जो एक सड़क पर यात्रा कर रहा था। लुटेरों ने उस पर हमला किया और उसे पीटा और अधमरा छोड़कर भाग गए। एक अन्य जाति के एक व्यक्ति ने बुरी तरह से घायल उस व्यक्ति को देखा। उसने उसके जख्मों की मरहम पट्टी की। उसने उस आदमी को अपने गधे पर बिठाया और उसे एक सराय में ले गया जहां उसकी अच्छी देखभाल की। बेहतर होने तक के लिए बीमार आदमी की देखभाल करने के लिए उसने खुद ही सराय मालिक को पैसा दिया। यीशु ने कहा कि हमें उन लोगों को प्रेम और मदद करनी चाहिए जिन्हें इसकी जरूरत हो, चाहे वे दूसरी नस्ल या धर्म के क्यों ना हो। चित्र 30। यीशु मसीह सबसे शक्तिशाली है। यीशु के अनुयायी बुरी आत्माओं की पूजा नहीं कर सकते। हमें उनसे डरना या उनकी सेवा करने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु शैतान और बुरी आत्माओं से अधिक शक्तिशाली है। विश्वास करने वालों को हर उस चीज से छुटकारा पाना ही होगा जो उनको शैतान और बुरी आत्माओं के लिए बाध्य करती और उनकी ओर ले जाती है। प्रभु यीशु हमें उनसे सुरक्षित रखते हैं जब हम उनसे अनुरोध करते हैं। चित्र 31। बुरी आत्माओं को बाहर निकालना। एक समय एक आदमी था जो अनेक बुरी आत्माओं के कब्जे में था। रस्सियां और जंजीरें भी उसे नहीं रोक पाती थी क्योंकि उसके अंदर मौजूद बुरी आत्माएं बहुत ताकतवर थी। यीशु ने उन आत्माओं को बाहर आने का आदेश दिया और वे आ गई। वह आदमी बुरी आत्माओं के चुंगल से आजाद हो गया। वह गया और अपने सभी मित्रों को बताया कि यीशु ने उसके साथ क्या किया है। यीशु ने अनेक लोगों को बुरी आत्माओं से मुक्ति दिलाई। शैतान और बुरी आत्माओं को यीशु की आज्ञा माननी ही पड़ती है। आप भी विश्वास करने वाले हो सकते हैं, फिर भी शायद आप बुरी आत्माओं के कारण परेशान हो सकते हैं। याद रखें कि आप परमेश्वर के हैं। शैतान का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं है। उसका विरोध करें और शक्तिशाली प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि वे उन बुरी आत्माओं को आपसे दूर करें। प्रभु पर विश्वास करने वालों को आपके साथ प्रार्थना करने के लिए कहें। यीशु किसी भी बुरी आत्मा से अधिक शक्तिशाली है। जब आप यीशु की शरण में जाते हैं तो उनकी शक्ति आपको सुरक्षित रखती है और शैतान आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चित्र 32 प्रलोभन। शैतान परमेश्वर के बच्चों को अवसर मिलने पर प्रलोभन देने की कोशिश करता है। वह उनको प्रभु यीशु का अनुसरण करने से रोकना चाहता है। शैतान विश्वास करने वालों को अनेक प्रलोभन देने की कोशिश करता है, जैसे धन संपत्ति, नशीली दवाएं, तीखी शराब और अनैतिक जीवन यापन। वह हमें विश्वास दिलाना चाहता है कि ये चीजें हमें प्रसन्न बनाएंगी। हालांकि शैतान झूठ बोलता है। वह हमें भ्रमित करने और परमेश्वर के मार्ग से मुंह मोड़ने को प्रेरित करता है। इसका विरोध करने और प्रलोभन से बाहर आने में आपकी मदद के लिए परमेश्वर से अनुरोध करें। मसीह यीशु पर विश्वास रखें और केवल उनका अनुसरण करें। चित्र 33। यदि हम पाप करें, क्या होगा यदि कोई विश्वास करने वाला व्यक्ति पाप करे? यीशु ने यह कहानी सुनाई। एक युवा आदमी ने घर छोड़ दिया, बहुत दूर चला गया और उसने अनेक बुरे काम किए। उसने व्यभिचार करके और अपने पिता का धन अपव्यय करके काफी पाप किया। फिर वहां एक भयानक अकाल पड़ा। वह बहुत गरीब और भूखा हो गया। उसे फिर वे फली खाकर पेट भरना पड़ा जो सुअरों को खिलाई जाती थी, लेकिन किसी ने उसे भोजन नहीं दिया। फिर उसे ज्ञान हुआ कि उसने परमेश्वर और अपने पिता के विरुद्ध पाप किया है। अपने किए पर उसे सच में पछतावा हुआ। वह अपने पिता के पास वापस लौटा। उसके पिता अब भी अपने पुत्र को प्रेम करते थे, हालांकि उसने काफी पाप किया था। अत्यधिक उल्लास के साथ उन्होंने अपने पुत्र का स्वागत किया और उसे क्षमा कर दिया। यदि हमने पाप किया है तो हमें सचमुच क्षमा प्रार्थी होकर प्रायश्चित करना होगा और अपने पापों से मुंह मोड़ना होगा। फिर परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा और इस कहानी में पिता की भांति हमें अपनी शरण में लेगा। यीशु ने कहा, पापों से पश्चाताप करने वाले के लिए स्वर्ग में आनंद है। चित्र 34 बीमारी। परमेश्वर के लोगों को बीमार हो जाने पर क्या करना चाहिए? उन्हें पहले परमेश्वर से बातचीत करना चाहिए और उस पर भरोसा करना कि जो कुछ भी वो करता है उत्तम करता है। परमेश्वर चाहे तो वह बीमारों को चंगा करने में सामर्थ्य है। परमेश्वर हमें प्रेम करता है और हमारे साथ होने वाली सभी घटनाओं को नियंत्रित करता है। बीमारी के समय में हमें शांति देने और मदद करने के लिए यीशु हमारे साथ होता है। चित्र 35 मृत्यु। इस चित्र में लोग अपनी प्रथा के अनुसार अपने मृत परिजन को दफना रहे हैं। एक दिन हम सभी मर जाएंगे, लेकिन तब हमारे साथ क्या होगा? परमेश्वर के वचन बाइबल कहती है कि जब विश्वास करने वाला मर जाता है तो उसकी आत्मा प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में जाती है। इस चित्र में विश्वास करने वाले के परिवार के लोग और मित्र दुखी हैं, लेकिन वो शोक के साथ हताश नहीं हुए। हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमें प्रेम करता है और हमें पाप और शाश्वत मृत्यु से बचाता है। विश्वास न करने वालों के लिए परमेश्वर के साथ शाश्वत जीवन की यह आशा नहीं होती। बाइबल कहती है कि वे शाश्वत दंड वाले स्थान पर भेजे जाएंगे। आप मरने के बाद कहाँ जाना चाहेंगे? चित्र 36, मसीह का शरीर। हमारे शरीर के हर एक अंग का अपना उद्देश्य है। आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, मुंह बात करने के लिए और खाने के लिए है। शरीर के सभी अंग साथ मिलकर काम करते हैं। यदि एक अंग बीमार या घायल होता है तो पूरे शरीर को कष्ट होता है। परमेश्वर कहता है कि विश्वास करने वाले लोग चर्च नामक शरीर के अंग हैं। यीशु मसीह शरीर के सिर हैं। परमेश्वर के पास प्रत्येक विश्वास करने वाले के करने के लिए कार्य है। उदाहरण के लिए उपदेश देना, गाना, सेवा करना, शिक्षा देना, सत्कार करना और दूसरों की मदद करना। यदि विश्वास करने वाला कोई एक व्यक्ति अपना कार्य करने में असफल होता है तो चर्च के पूरे शरीर को कष्ट होता है। परमेश्वर के सम्मान में सभी विश्वास करने वालों को साथ मिलकर कार्य करना चाहिए और एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। चित्र 37, पूजा के लिए मिलना। परमेश्वर की पूजा करने के लिए विश्वास करने वाले लोग नियमित रूप से मिलते हैं। जब वे मिलते हैं तो वे बाइबल से सीखते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। उन्हें परमेश्वर के कार्य के लिए चढ़ावा देना चाहिए। प्रभु यीशु ने अपने अनुयायियों से उसकी मृत्यु याद रखने को कहा। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि विश्वास करने वाले लोग साथ साथ खाना पीना कर रहे हैं। टुकड़ों में बंटी हुई रोटी जिसे वे खा रहे हैं वह उनको यीशु के क्षत विक्षत शरीर की याद दिलाती है जब उन्हें क्रूस पर मारा गया था। जो वे साथ साथ पी रहे हैं वह उन्हें उसके खून की याद दिलाता है जो उन्हें उनके पापों से बचाने के लिए बहा। हमें भी मिलना चाहिए और यीशु की मृत्यु को याद रखना चाहिए जब तक कि वे वापस नहीं आते। चित्र 38, यीशु मसीह वापस लौटेंगे। एक दिन यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर वापस आएंगे जैसा कि उन्होंने वचन दिया था। वे अचानक आएंगे जब लोग उनकी उम्मीद ना कर रहे होंगे। जो तब भी जीवित होंगे वे उनसे मिलेंगे, लेकिन सब कुछ एकाएक बदल जाएगा। वे सब साथ साथ हवा में प्रभु से मिलेंगे। वे परिपूर्ण हो जाएंगे और उसके साथ हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेंगे। विश्वास ना करने वालों को पीछे छोड़ दिया जाएगा। उनको परमेश्वर के न्याय का कष्ट उठाना होगा। हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कब वापस आएंगे, लेकिन हमें हर समय तैयार रहना है और उनकी प्रतीक्षा करनी है। यदि प्रभु यीशु आज ही वापस आ जाते हैं तो क्या आप उनसे मिलने के लिए तैयार हैं? चित्र 39, फलों को धारण करना। इस चित्र में दिखते पेड़ पर तमाम फल लगे हैं। जब हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा फलों को पैदा करने के लिए हमें कार्य करती है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दयालुता, अच्छाई, वफादारी, सौम्यता और आत्मनियंत्रण है। यीशु ने कहा, मैं लता हूँ, तुम सब शाखाएं हो। यदि तुम मेरे साथ रहे और मैं तुम में रहा तो तुम अधिक फलों को धारण कर सकोगे। मृत शाखाएं फलों को धारण नहीं कर सकती, वे काट दी जाती हैं और जला दी जाती हैं। यीशु चाहते हैं कि उनके अनुयायी अधिक फल पैदा करें। यह परमेश्वर के सम्मान में है तथा और लोगों की मदद करता है। चित्र 40, गवाही देना। जो कोई उस में विश्वास करता है वह पापों से शाश्वत दंड और मृत्यु से बचा लिया जाएगा। यदि आप विश्वास करने वालों में से हैं, तो आपको यह शुभ संदेश समझने में अन्य लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको जीवन जीने और उनसे बात करने का साहस प्रदान करेगी। इस डीवीडी का उपयोग औरों को वह बताने में करें जो आपने सीखा। इस तरह से अनेक लोग परमेश्वर और हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के बारे में सत्य जान सकेंगे। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन।